एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी के संग में मैं हूँ आपकी मेजबान
और मैं हूँ आपका साथी मेजबान।
आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, ऐसी किताब जिसने मध्य पूर्व को समझने का नजरिया बदला।
बिल्कुल, थॉमस एल फ्रीडमैन की फ्रॉम बेरूत टू जेरूसलम।
ये किताब आई तो थी 1989 में,
हाँ
है ना?
हाँ
हाँ।
पर कमाल यह है कि आज भी जब हम मिडल ईस्ट के बारे में सुनते हैं, वही तनाव, वही मुद्दे।
तो लगता है फ्रीडमैन ने जो बातें कही थी वो आज भी उतनी ही सच है।
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ लेबनान के गृह युद्ध या इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का कोई सिर्फ ब्यौरा नहीं है।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उन जड़ों तक जाती है, कैसे इतिहास, पहचान, पुरानी रंजिशें
आज भी उस इलाके को चला रहे हैं।
हाँ, ये समझने की कोशिश है कि आखिर वो इलाका हमेशा ऐसे सुलगता क्यों रहता है।
और खास बात यह कि ये कोई एकेडमिक स्टडी जैसी नहीं है।
नहीं, ये उनके अपने अनुभव हैं, वो वहां रहे, उन घटनाओं के बीच।
एक पत्रकार के तौर पर तो आज हम उन्हीं के नजरिए से देखेंगे, समझेंगे कि किताब क्या कहती है।
हाँ, इसके सबक क्या हैं? तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। थॉमस फ्रीडमैन?
हाँ जरूर, ये कोई आम पत्रकार नहीं है।
बिल्कुल नहीं। 3 बार पुलित्जर प्राइज विनर, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाने माने कॉलमिस्ट।
और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लगभग 10 साल 1979 से 88 तक
पूरा एक दशक
मिडल ईस्ट में रिपोर्टिंग करते हुए गुजारा।
और वो भी उस वक्त जब वहां बहुत उथल पुथल थी।
हाँ, और उनकी जो पहुंच थी, जो नजरिया था, वो बड़ा अनोखा था।
सोचिए,
बेरूत और यरूशलम दोनों जगह ब्यूरो चीफ रहे।
ये बहुत बड़ी बात है, दोनों संघर्षों के केंद्र में।
उन्होंने लेबनान का सिविल वॉर देखा, 1982 का इजरायली हमला,
साबरा और शतीला का वो भयानक नरसंहार,
पहला इंतिफादा, वो फिलिस्तीनी विद्रोह, सब कुछ अपनी आंखों से।
और सिर्फ देखा नहीं, अरबी सीखी उन्होंने।
अच्छा,
लोगों से सीधे बात करने के लिए।
हाँ,
ताकि वो आम लोगों को समझ सकें, अलग अलग गुटों के लोगों से मिले, रिश्ते बनाए।
और उनकी अमेरिकी यहूदी पृष्ठभूमि, उसका भी असर रहा होगा।
हाँ, उससे उन्हें इजरायली समाज को अंदर से देखने का मौका मिला
और अरब दुनिया को वो एक बाहरी के तौर पर समझ पाए।
तो उनका मकसद सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं था, वो क्यों समझना चाहते थे।
सही कहा, तो ये किताब एक तरह से उनका अपना सफर भी है।
हाँ, उनकी अपनी एजुकेशन है, जैसा आपने कहा, कैसे एक पत्रकार कठोर सच्चाइयों से रूबरू होता है।
तो अब आते हैं किताब के निचोड़ पर, क्या है इसका सार?
जैसा हमने कहा, ये सिर्फ यादें नहीं है, ये एक गहरा विश्लेषण है।
राजनीति, संस्कृति, संघर्ष, सब कुछ।
और फ्रीडमैन का मेन पॉइंट ये है कि पश्चिमी चश्मे से, सिर्फ तर्क या लॉजिक से,
जी,
मिडिल ईस्ट को समझना मुश्किल है।
वो कहते हैं कि ये इलाका असल में पुरानी कबायली वफादारियों से चलता है।
अच्छा।
गहरे धार्मिक जज्बात, सदियों पुरानी शिकायतें, पहचान की लड़ाई, इन सब चीजों से।
वहां के नियम अलग हैं।
बिल्कुल, और अतीत वो कभी मरता नहीं, वो आज को चलाता है।
दो शहरों के जरिए ये कहानी बताते हैं, बेरूत और यरूशलम।
हाँ, ये सिर्फ शहर नहीं, प्रतीक है। बेरूत
अराजकता, बिखराव, कई गुटों की लड़ाई,
और यरूशलम
वो इसराइल फिलिस्तीन का सीधा टकराव, दो कौमें एक जमीन।
ये बंटवारा समझने में मदद करता है। तो चलिए पहले बेरूत चलते हैं। फ्रीडमैन उसे क्या कहते हैं, मध्य पूर्व का छोटा रूप?
हाँ बिल्कुल, एक देश जहाँ दर्जनों गुट लड़ रहे थे, सरकार नाम की चीज नहीं थी।
और यही वो बात आती है, कबीलापन बनाम राष्ट्रवाद।
हाँ, बहुत जरूरी बात कि लेबनान तब एक देश कम था
और झंडों वाले कबीलों का झुंड ज्यादा।
सही, वफादारी देश के लिए नहीं, अपने गुट, अपने मोहल्ले के लिए थी।
ये तो सोचने वाली बात है कि पहचान कितनी सिमट सकती है।
हाँ, और ये सिर्फ लेबनान की बात नहीं, ऐसा कई जगह होता है।
और इस अंदरूनी लड़ाई में बाहरी ताकतों ने भी हाथ सेके।
बिल्कुल, 1982 में इसराइल का हमला, उनका मकसद था पीएलओ को निकालना
और अपनी पसंद की सरकार बनवाना, बशीर गेमाइल की।
हाँ, और फिर सीरिया, अमेरिका, सबने लेबनान को एक प्रयोगशाला बना दिया।
नतीजा, हालात और खराब हुए।
और इसी दौरान फ्रीडमैन ने वो भयानक मंजर देखा, साबरा और शतीला कैंपों का नरसंहार,
जहां इसराइली सेना की निगरानी में
सैकड़ों फिलिस्तीनी मार डाले।
इसी के बाद फ्रीडमैन ने हामा रूल्स की बात की थी ना?
हाँ, ये नाम सीरिया के हामा शहर से आया था।
इसका मतलब क्या था? कुछ बहुत क्रूर सा?
हाँ, सीधा और बेरहम है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अक्सर नियम कानून नहीं चलते।
सत्ता सिर्फ ताकत से मिलती है,
क्रूर ताकत से। समझौता करना मतलब कमजोरी, हारने वाले का सब कुछ जाता है, जान भी।
सब कुछ या कुछ नहीं वाला खेल।
हाँ, मारो या मरो, खाओ या खाए जाओ, और ये सिर्फ सरकारों पर नहीं,
हथियारबंद गुटों पर भी लागू होता था।
बिल्कुल।
और बाहरी ताकतें जैसे अमेरिका, वो भी इससे बच नहीं पाए।
नहीं, वो मरीन बैरक पर हमला, 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत,
एक बड़ा झटका था, उन्हें हटना पड़ा।
फ्रीडमैन के लिए ये सबक था, आप बाहर से शांति नहीं थोप सकते,
खासकर ऐसी जगह जहाँ समाज बटा हो और हामा रूल्स चलते हो।
हाँ, जमीनी हकीकत समझे बिना दखल देना खतरनाक है। तो बेरूत की इस खूनी अराजकता के बाद वो हमें यरूशलम ले जाते हैं।
यहाँ माहौल अलग है।
हाँ, यहाँ लड़ाई कई गुटों में नहीं है, सिर्फ दो मुख्य पक्ष, इसराइल और फिलिस्तीनी।
फ्रीडमैन इसे कोल्ड वॉर जैसा कहते हैं, ठंडा युद्ध।
हाँ, जहाँ सीधी जंग न भी हो पर तनाव और हिंसा हमेशा रहती है।
और यहाँ वो बात करते हैं अदृश्य दीवारों की।
ये बहुत गहरी बात है, यादों की, डर की, एक दूसरे को नकारने की।
ये मनोवैज्ञानिक बंटवारा जमीनी बंटवारे से ज्यादा खतरनाक।
हाँ, और ये दीवारें दोनों तरफ हैं। पहले इजरायली सोच को देखें,
होलोकॉस्ट की यादें।
हाँ, वो उन पर बहुत हावी हैं। फिर कभी नहीं का संकल्प, सुरक्षा को लेकर जुनून, बाहरी दुनिया पर शक।
और इजरायली समाज भी अंदर से बटावा है ना।
बिल्कुल, अश्किनाजी, सिफारदी, सेक्युलर, धार्मिक, कई तरह के तनाव हैं।
और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मानसिकता, उसे समझने के लिए नकबा को याद रखना होगा।
हाँ, 1948 की वो महाविपदा जब लाखों लोग बेदखल हुए,
उनके लिए इतिहास का मतलब है जमीन खोना, शरणार्थी बनना, कब्जे में रहना।
उनकी कहानी में नुकसान और नाइंसाफी का दर्द है।
फ्रीडमैन यहाँ अराफात और PLO की आलोचना भी करते हैं।
हाँ, वो मानते हैं कि अराफात क्रांतिकारी प्रतीक तो बने पर राष्ट्र निर्माण में उतने कामयाब नहीं हुए।
उनमें वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच थी,
फ्रीडमैन के मुताबिक। हाँ, जो समझौते में रुकावट बनती थी।
और फिर 1987 में पहला इंतिफादा शुरू हुआ।
हाँ, वो आम लोगों का विद्रोह था, नौजवानों का, अक्सर सिर्फ पत्थरों से।
फ्रीडमैन इसे एक बड़ा मोड़ मानते हैं।
बिल्कुल, इसने कई चीजें बदली, फिलिस्तीनी संघर्ष का चेहरा बदला,
अब ये जमीन पर लोगों का संघर्ष दिखने लगा।
हाँ, और इसने इसराइलियों को भी आईना दिखाया, उन्हें कब्जे की कीमत का एहसास दिलाया,
उन अदृश्य दीवारों को हिला दिया इसने।
कुछ हद तक अब पड़ोसियों की हताशा को नजरअंदाज करना मुश्किल था।
तो पूरी किताब को समेटे अगर तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, 3-4 सबसे जरूरी बातें?
पहली तो यही, अतीत का भारी बोझ, इतिहास वहां जिया जाता है, सिर्फ याद नहीं किया जाता।
पुरानी शिकायतें आज की राजनीति तय करती हैं।
हाँ, माफ करना, भूलना बहुत मुश्किल है।
दूसरी बात, कबीले की पहचान सबसे ऊपर।
बिल्कुल, वफादारी देश से पहले अपने गुट, अपने धर्म के लिए।
फ्रीडमैन ने कहा था ना कि लिबनम ने कई लोगों के लिए राष्ट्र मायने ही नहीं रखता था।
हाँ, उनकी वफादारी मोहल्ले तक थी, ये बात पश्चिमी नीतियाँ अक्सर भूल जाती हैं।
इसीलिए बाहर से थोपे गए मॉडल फेल होते हैं।
तीसरा संदेश, घेराबंदी का मनोविज्ञान, विक्टिमहुड वाली मानसिकता।
हाँ, कि दोनों पक्ष खुद को सबसे बड़ा पीड़ित मानते हैं, PhDs इन सफरिंग।
जब हर कोई खुद को मजलूम समझेगा तो दूसरे का दर्द कैसे दिखेगा।
ये सुलह में बहुत बड़ी रुकावट है,
ये संघर्ष को लंबा खींचती है।
और चौथी बात, वो डरावनी सच्चाई, हामा रूल्स, बेरहमी की राजनीति।
सब कुछ या कुछ नहीं, समझौता मतलब कमजोरी, ताकत ही सब कुछ है।
ये तो हिंसा का दुष्चक्र है
जिससे निकलना बहुत मुश्किल है।
किताब में कई यादगार पंक्तियां भी हैं, छोटे वाक्यों में बड़ी बातें।
हाँ, जैसे हामा रूल्स पर वो कहते हैं कि यहाँ का उसूल है, राज करो या गुलाम बनो, खाओ या खाए जाओ।
समझौता तो जैसे किसी और दुनिया की चीज है,
ये उस बेरहम सोच को दिखाता है।
और पहचान पर वो बात,
हाँ, कि यहाँ लोग देश के लिए नहीं, अपने मोहल्ले या समुदाय के लिए मरते हैं।
स्थानीय पहचान कितनी हावी है।
और इतिहास पर, लोग यहाँ सिर्फ अपना इतिहास याद नहीं रखते, उसे हर दिन जीते हैं।
ये बिल्कुल सच लगता है, अतीत कितना जिंदा है।
और यरूशलम पर असली दीवारें पत्थर की नहीं, यादों, डर और इनकार की हैं।
वो मनोवैज्ञानिक दीवारें
जिन्हें तोड़ना सबसे मुश्किल है। यहाँ अब्बा एबान वाली बात भी याद आती है।
हाँ, वो क्या थी?
फ्रीडमैन अक्सर कोट करते थे, फिलिस्तीनी कभी मौका गंवाने का मौका नहीं चूकते।
ओ, इसे सावधानी से देखना होगा।
हाँ, ये एक नजरिया है। फ्रीडमैन इजरायली फैसलों की भी आलोचना करते हैं, ये शायद दोनों तरफ के नेतृत्व की नाकामी पर इशारा है। तो इन सब बातों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, इनसे हम क्या सीखें? पहली बात तो साफ है, ये सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसे संघर्षों को समझने में मदद करती है जहां पहचान, इतिहास, कबीलापन अहम हो।
दूसरी बात, कहानी का महत्व, नैरेटिव कितना पावरफुल होता है।
हाँ, इजरायली फिर कभी नहीं की कहानी, फिलिस्तीनी नकबा की कहानी, दोनों अपनी अपनी सच्चाई में कैद हैं।
तो हमें सीखना चाहिए कि किसी भी झगड़े में दूसरे की कहानी सुनना जरूरी है।
बिल्कुल, भले ही सहमत ना हो, शायद वही सुलह का पहला कदम है।
और तीसरी सीख, सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच कितनी खतरनाक है।
हमास रूल्स दिखाते हैं कि ये सिर्फ तबाही लाती है, हमें सबकी जीत वाले रास्ते ढूंढने होंगे।
और मीडिया लिटरेसी भी, खबरों पर यूं ही यकीन ना कर लें।
हाँ, आलोचनात्मक नजर से देखें, सतह के नीचे क्या है, किसकी आवाज सुनी जा रही है, किसकी नहीं।
और आखिर में बाहरी लोगों के लिए विनम्रता का सबक।
हाँ, अमेरिकी दखल की नाकामी यही दिखाती है, बाहर से समाधान थोपना नामुमकिन है।
जब तक आप स्थानीय समाज, इतिहास, भावनाओं को नहीं समझते,
आपका दखल नुकसान कर सकता है। समाधान अंदर से आते हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया आज भी वही गलतियां कर रही है?
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये रही कि सबसे मुश्किल लड़ाइयां जमीन के लिए कम,
पहचान, यादों और कहानियों के लिए ज्यादा लड़ी जाती हैं।
हाँ, वो अदृश्य दीवारें ही सबसे मजबूत हैं, फ्रीडमैन ने उन्हें दिखाया।
और मुझे सबसे ज्यादा ये बात अच्छी लगी कि फ्रीडमैन कैसे बड़ी राजनीतिक बातों को इंसानी कहानियों से जोड़ते हैं।
नेताओं के पीछे के आम इंसान, उनके डर, उनकी उम्मीदें।
हाँ, और ये सबक कि बाहरी समाधान क्यों फेल होते हैं आज भी उतना ही सच है। गहरी समझ और हमदर्दी के बिना शांति नहीं आ सकती।
ये किताब याद दिलाती है कि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, समझ भी चाहिए।
और सवाल वही है, क्या हम कभी उन अदृश्य दीवारों को गिरा पाएंगे, चाहे वो यरूशलम में हो या हमारे अपने समाजों में।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।